ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से आम आदमी पार्टी के विधायकों को संदेश भेजा। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल नई दिल्ली में आईओएस मोबाइल फोन के लिए माई सीजीएचएस ऐप का अनावरण किया और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कल से 23 अप्रैल तक सांस्कृतिक पर्व उत्सव मनाएगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जेल से आम आदमी पार्टी के विधायकों को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता मेरा परिवार है, सभी विधायक जनता के बीच जाकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि वो जेल में हैं जिससे राजधानी वासियों को तकलीफ न हो। गौरतलब है कि श्री केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। उन्हें इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा सोमवार को फैसला सुनाएंगे। कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है और मांग की है कि आप अरविंद केजरीवाल की फोटो को शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह और डॉ बी आर आम्बेडकर की तस्वीरों के बीच लगा रही है, जिसे तत्काल हटाना चाहिए। श्री सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उनकी फोटो को राष्ट्रभक्तों के बीच में लगाना उनकी गरिमा का अपमान करना है। आप नेता आतिशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति से मुलाकात कर भाजपा द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने के बारे में शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी होर्डिंगों में से कुछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोटो लगे हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने 4 दिन पहले शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए समय मांगेंगी। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आप नेता आतिशी का ये कहना कि जब चुनाव आयोग 6 दिन बाद भी पोस्टरों के बारे में की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो गंभीर मामलों में वो क्या करेगा, तो ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर उंगली उठाना और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है। श्री कपूर ने कहा कि सुश्री आतिशी चुनाव आयोग से त्वरित कार्रवाई चाहती हैं, पर अपने शब्दों से भाजपा का अपमान करने पर मिले मानहानि नोटिस पर 2 दिन बाद भी चुप्पी साधे बैठी हैं। राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। सभी दलों के उम्मीदवार राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह विधोड़ी ने महरौली क्षेत्र के साधनगर में कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक की। वहीं चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने शकूरपुर में आयोजित वाल्मीकि समाज की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों से विभिन्न विकासशील और अन्य विषयों पर चर्चा की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने संजय कॉलोनी झुग्गी बस्ती में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। वहीं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नजफगढ़ स्थित सैनिक एनक्लेव कॉलोनी में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद संजय निरुपम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के बाद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस नोट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों पर विचार करने के बाद श्री निरुपम को निष्कासित कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल नई दिल्ली में iOS मोबाइल फोन के लिए MyCGHS ऐप का अनावरण किया। इस ऐप पर केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थी अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप एंड्रॉयड फोन के लिए पहले से ही उपलब्ध है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री चंद्रा ने कहा कि इस ऐप पर चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, लैब रिपोर्ट, दवाओं संबंधी जानकारी और अपने निकटतम स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र जैसी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हैं।
ये ऐप पहले एंड्रॉयड का ऐप होता था, आज एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए iOS का भी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे CGHS का, तो CGHS की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर कहां पर वेलनेस सेंटर है, वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सा करीबी आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, एंड्रॉयड के लिए ये ऐप ऑलरेडी चल रहा था और अब ये ऐप iOS के यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा, तो भारत के जितने भी CGHS के जो लाभार्थी हैं सबको इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। जैसे कि आधार सबका बना है, वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य।
श्री चंद्रा ने CGHS कार्ड को आभा आईडी से लिंक करने से जुड़ी सरकारी कर्मचारियों की चिंता को दूर करते हुए कहा कि CGHS योजना को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य की जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहित करती है।
आभा एक नंबर है जो आधार से लिंक्ड है और ये डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी है, जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जिसमें देश के सभी नागरिकों का आभा कार्ड बनना है। इसका कोई भी संबंध आयुष्मान भारत योजना से नहीं है। ये जैसे कि आधार सबका बना है, वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य ये है। जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है उसका, वो भी आपके ही अख्तियार में रहेगा और आपका पूरा उस पर अधिकार है कि आप उसको किसी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी कल से 23 अप्रैल तक सांस्कृतिक पर्व उत्सव मनाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष सांस्कृतिक पर्व उत्सव के जरिए कार्यकर्ता लोगों को भाजपा से जोड़ेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री के विकसित भारत कार्यक्रम की भी चर्चा घर घर की जाएगी। उन्होंने 23 अप्रैल तक मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती मनाई जाएगी, जिसके मुख्य कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा आयोजित करेगा। वहीं 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, उसी दिन हर बूथ स्तर पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र लगाकर माल्यार्पण होगा। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। खदान लैंडमाइन संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का विषय है जीवन संरक्षण, शांति निर्माण। इस संबंध में बारूदी विस्फोटों से पीड़ित लोगों और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से विभिन्न संगठन प्रत्येक वर्ष इस दिन खदानों और विस्फोटकों के कारण उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकार ने दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को गलत और भ्रामक करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कीमत बढ़ने से 500 से ज्यादा दवाएं प्रभावित होंगी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण हैं। इसमें कहा गया है कि औषधि विभाग के तहत राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण सालाना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर दवाओं की अधिकतम कीमतों को संशोधित करता है, मंत्रालय ने कहा है कि 782 दवाओं के लिए मौजूदा अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 54 दवाओं में 1 पैसे की मामूली वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की निंदा की। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की गरिमा का अनादर और अपमान करने का एक नया स्तर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये महज एक कांग्रेस नेता का बयान नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोची समझी कायरतापूर्ण मानसिकता है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनका इरादा हेमा मालिनी का अपमान या उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। हरियाणा में राज्य महिला आयोग ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद तथा लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी पर कथित अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि श्री सुरजेवाला को 9 अप्रैल को समिति के समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने मीडिया खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। अम्बाला में सुश्री भाटिया ने कहा कि श्री सुरजेवाला की अभद्र टिप्पणी से एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता पर आधारित संस्थानों को नए सैनिक स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे समाचार निराधार हैं। एक रिपोर्ट।
सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 के दशक में सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण सफलता को देखते हुए देश में अतिरिक्त सैनिक स्कूलों की लगातार मांग की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में देश भर के युवाओं को सैनिक स्कूल के पैटर्न की शिक्षा का लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने देश भर में 100 स्कूल स्थापित करने की योजना शुरू की। नई सैनिक स्कूल की योजना पूरी तरह विचार विमर्श और कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद बनाई गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निरंतर कार्य किया जाए और पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। मंत्रालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पर्श सक्सेना।
दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल वाटर वर्क्स की 900 मिलीमीटर व्यास वाले पाइपलाइन की मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के कुछ क्षेत्रों में कल सुबह पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन क्षेत्रों में सिविल लाइन्स कमलानगर, शक्तिनगर, करोलबाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली पालिका परिषद के क्षेत्र, ओल्ड और न्यू राजेन्द्र नगर, पटेल नगर और दक्षिणी दिल्ली के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी जल बोर्डों केंद्रों से संपर्क कर अपने पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। और अब मौसम। राजधानी में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय तेज धूप खिली रहने से दिन का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहते हुए 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से आम आदमी पार्टी के विधायकों को संदेश भेजा। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल नई दिल्ली में iOS मोबाइल फोन के लिए MyCGHS ऐप का अनावरण किया। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कल से 23 अप्रैल तक सांस्कृतिक पर्व उत्सव मनाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।